एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर गोता लगा रहे हैं जो जानी पहचानी सी लगने वाली इतिहास की कहानी को मतलब बिल्कुल नए नजरिए से देखती है।
हाँ, किताब है मैथ्यू रेस्टॉल और फिलिप फर्नांडेज आर्मिस्टो की दी कॉन्क्विस्टेडोर्स।
और ये किताब आज भी बहुत जरूरी है ना?
बिल्कुल, क्योंकि ये अमेरिका पर स्पेनिश विजय की वो जो वीर गाथा हम सुनते आए हैं।
हाँ, कि कुछ बहादुर स्पेनिश योद्धा आए और उन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य जीत लिए।
बिल्कुल, ये उस कहानी को चुनौती देती है। ये दिखाती है कि सच्चाई कहीं ज्यादा पेचीदा है और शायद थोड़ी चौंकाने वाली भी।
और ये हमें सिखाती है कि इतिहास को अलग अलग चश्मों से देखना कितना जरूरी है।
सही कहा। तो इस गहराई को समझने के लिए लेखकों को जानना भी जरूरी है।
हाँ, पहले हैं मैथ्यू रेस्टॉल। ये उपनिवेशी लैटिन अमेरिका के इतिहास के, खासकर माया सभ्यता के, जाने माने विशेषज्ञ हैं।
अच्छा।
और वो नई विजय इतिहास जिसे कहते हैं, मतलब न्यू कॉन्क्वेस्ट हिस्ट्री, उसके एक बड़े पैरोकार हैं।
ये क्या है नई विजय इतिहास?
ये इतिहास लिखने का एक तरीका है जो यूरोप केंद्रित नजरिया छोड़ने पर जोर देता है। मतलब वो स्वदेशी भाषाओं के स्रोतों को, वहां के लोगों के नजरिए को ज्यादा अहमियत देते हैं।
यानी वो आवाजें जो अक्सर दब जाती हैं।
बिल्कुल। उनकी एक और किताब थी सेवन मिथ्स ऑफ द स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट, उसने इस पूरी बहस की नींव रखी थी एक तरह से।
अच्छा, और दूसरे लेखक?
दूसरे हैं फिलिप फर्नांडेज आर्मिस्टो। ये ब्रिटेन के बहुत माने हुए इतिहासकार हैं। वैश्विक इतिहास, खोज यात्राएं, पर्यावरण का इतिहास, इन सब पर लिखते हैं। उनकी खासियत है कि वो चीजों को बड़े कैनवस पर देखते हैं। मतलब किसी एक घटना को पूरी दुनिया के पैटर्न से जोड़कर देखते हैं। उनकी किताबें जैसे मिलेनियम या पाथफाइंडर्स इसी अप्रोच के लिए जानी जाती हैं।
तो एक विशेषज्ञ जो बिल्कुल जमीनी हकीकत, स्वदेशी नजरिए पर फोकस कर रहे हैं।
हाँ, रेस्टॉल।
और दूसरे जो उसे पूरी दुनिया के संदर्भ में रख रहे हैं,
फर्नांडेज आर्मिस्टो।
बिल्कुल।
और इसी वजह से ये जोड़ी कमाल की है।
हाँ, मतलब एक गहरी समझ और एक व्यापक दृष्टिकोण, ये मिलके उन मिथकों को तोड़ने के लिए परफेक्ट है जो हम सच मानते आए हैं।
सही का।
तो किताब का मुख्य तर्क क्या है, मतलब निचोड़ क्या है?
देखिए, निचोड़ ये है कि वो कहानी झूठी है कि कुछ गिने चुने महान स्पेनिश योद्धाओं ने अपनी हिम्मत और बेहतर हथियारों के दम पर एस्टेक और इंका जैसे विशाल साम्राज्य जीत लिए।
अच्छा, तो फिर सच क्या है?
किताब कहती है कि ये छवि, ये कहानी ज्यादातर खुद विजेताओं ने, मतलब कॉन्क्विस्टाडोर्स ने गढ़ी थी
अपने फायदे के लिए।
बिल्कुल। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? अगर मुट्ठी भर स्पेनियों ने अकेले या नहीं किया तो उनकी कामयाबी के पीछे क्या था?
हाँ, ये बड़ा सवाल है।
किताब तीन मुख्य चीजों पर जोर देती है जिन्हें पुरानी कहानियां या तो अनदेखा करती हैं या कम बताती हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी, स्वदेशी सहयोगी।
मतलब स्थानीय लोग?
हाँ, हजारों लाखों की तादाद में स्थानीय समूहों ने स्पेनियों को फौजी मदद दी, रसद पहुंचाई। क्यों? क्योंकि वो खुद एस्टेक या इंका जैसे अपने शासकों से परेशान थे, उनसे छुटकारा चाहते थे।
अरे, तो ये एक तरह का अंदरूनी विद्रोह था जिसमें स्पेनिश शामिल हो गए,
काफी हद तक आप कह सकते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर था बीमारियां।
बीमारियां
जैसे
चेचक, खसरा।
ये बीमारियां जो यूरोप से आईं, इन्होंने अमेरिका की मूल आबादी पर कहर बरपा दिया। उनके नेता मारे गए, समाज कमजोर हो गया। स्पेनियों ने इसका फायदा उठाया।
बाप रे।
और तीसरा
तीसरा
तीसरा फैक्टर था खुद इन साम्राज्यों की अंदरूनी कमजोरियां।
अच्छा, जैसे कि
राजनीतिक झगड़े, हाल में हुए गृह युद्ध, अस्थिरता। मतलब स्पेनियों का सामना किसी चट्टान जैसे एकजुट दुश्मन से नहीं हुआ।
समझा। तो इन सब चीजों ने मिलकर उनकी जीत मुमकिन बनाई।
हाँ, और इसी के साथ वो जो कॉन्क्विस्टाडोर की हीरो वाली छवि है वो भी बदल जाती है।
कैसे?
उनका असली रोल एंड गोल क्या था फिर? वो वीर सैनिक कम और हताश, हिंसक और अपने मतलब के लिए लड़ने वाले सशस्त्र उद्यमी ज्यादा थे।
आर्म्ड एंटरप्रेन्योर्स।
एंटरप्रेन्योर्स
मतलब बिजनेस की तरह।
हाँ, उनका मुख्य लक्ष्य था पैसा कमाना, गोल्ड, सोना लूटना, जमीन हथियाना, ताकि वो वापस स्पेन जाकर या नई दुनिया में ही छोटे मोटे रईस बन सकें।
और वो गॉड और ग्लोरी, मतलब धर्म और शान की बातें,
वो अक्सर दिखावा थी, असली मकसद पर पर्दा डालने के लिए। किताब कहती है कि उनकी सफलता किस्मत, सही टाइमिंग और हालात पर भी उतनी ही निर्भर थी जितनी उनकी किसी रणनीति पर।
दिलचस्प। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। किताब के पहले हिस्से में वो कॉन्क्विस्टेडोर शब्द पर ही सवाल उठाते हैं ना? ये थे कौन असल में?
हाँ बिल्कुल, जैसा हमने कहा, ये स्पेन की कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी। ये प्राइवेट लोग थे, एडवेंचरर थे, व्यापारी थे।
अच्छा।
हाँ, वो अपने अभियानों में खुद पैसा लगाते थे या फिर कंपनियों में हिस्सेदार बनते थे। उम्मीद क्या थी? लूटपाट करेंगे, जमीन कब्जाएंगे, वहां के लोगों से गुलामी करवाएंगे और अमीर बन जाएंगे।
तो क्रिस्टोफर कोलंबस एक तरह से इनका मॉडल बन गया।
बिल्कुल, कोलंबस ने पैटर्न सेट किया। पहले सोने और धन का वादा करो, फिर स्थानीय लोगों जैसे ताइनो का बेरहमी से शोषण करो, और फिर अपनी हरकतों को सही ठहराने के लिए कानूनी दांवपेच और जोरदार प्रोपेगेंडा करो। बाद के विजेताओं ने यही मॉडल अपनाया।
और क्या हम विजेता आते कहां से थे? क्या ये सब बड़े योद्धा थे?
नहीं, ज्यादातर स्पेन के गरीब इलाकों से थे, एक्सट्रेमादुरा, एंडालूसिया जैसे। कई तो कारीगर थे, छोटे मोटे क्लर्क, नोटरी थे या छोटी जमीन वाले रईस थे। पेशेवर सैनिक तो कम ही थे।
अच्छा,
उनका मकसद साफ था, नई दुनिया में जाकर किस्मत आजमाना है, अमीर बनना है। वो हिदाल्गो बनना चाहते थे, जो स्पेन में एक तरह का लोअर लेवल का रईस होता था। तो उनका गोल एकदम क्लियर था, पैसा।
समझ में आ गया। फिर किताब मेक्सिको की तरफ मुड़ती है, हर्नान कॉर्टेस और एस्टेक साम्राज्य। यहां भी वो कॉर्टेस की जीनियस वाली छवि को तोड़ते हैं।
हाँ, वो कहते हैं कि कॉर्टेस करिश्माई था, बेरहम था, मौका परस्त था, लेकिन उसने बहुत गलतियां भी की। उसकी सफलता का राज उसकी प्लानिंग से ज्यादा बाहरी फैक्टर्स में था।
और सबसे बड़ा फैक्टर क्या था?
सबसे बड़ा फैक्टर स्वदेशी सहयोगी। किताब बहुत जोर दे के कहती है कि टेनोच्टिट्लान यानी एस्टेक राजधानी का गिरना स्पेनिश जीत नहीं थी, बल्कि मेक्सिका यानी एस्टेक शासकों के खिलाफ एक जबरदस्त स्वदेशी विद्रोह था।
अरे,
क्लक्सकलान, टोटोनैक जैसे ग्रुप्स जो एस्टेक से तंग आ चुके थे, उन्होंने हजारों लड़ाके दिए, खाना पीना दिया, खुफिया जानकारी दी। स्पैनिश लोग तो बस एक चिंगारी थे जिसने इस विद्रोह की आग भड़काई।
लेकिन वो जो कहानी है कि स्पैनिश हथियार बहुत बेहतर थे, घोड़े थे उनके पास,
थोड़ा फायदा भी मिला होगा, लेकिन निर्णायक वो नहीं थे। सोचिए ना, कुछ 100 स्पैनियों के सामने लाखों की आबादी थी, हजारों योद्धा थे। असली पासा पलटा उन हजारों लाखों स्वदेशी सहयोगियों ने। और फिर एक और अहम किरदार थी मालिनसिन, जिन्हें ला मालिंचे भी कहते हैं।
हाँ, उनका नाम सुना है, अनुवादक थी वो।
सिर्फ अनुवादक नहीं, उन्हें सिर्फ अनुवादक या कॉर्टेस की रखेल समझना बहुत बड़ी भूल है। वो एक तेज तर्रार राजनीतिक सलाहकार थीं। उन्होंने कॉर्टेस को एस्टेक साम्राज्य के अंदरूनी झगड़ों को समझने और उनका फायदा उठाने में मदद की। उनके बिना तो शायद बातचीत ही मुमकिन न होती।
अच्छा, और फिर वो तीसरी चीज, वो जैविक हथियार।
हाँ, बीमारी। 1520 में चेचक का फैलना, वो असली मास डिस्ट्रक्शन वेपन था।
सच में?
हाँ, उसने टेनोच्टिट्लान की बहुत बड़ी आबादी को खत्म कर दिया। यहाँ तक कि नए एस्टेक सम्राट क्विटलाहुआक भी मारे गए। इसने लड़ने वालों का हौसला तोड़ दिया। ये काम स्पेनिश हथियार शायद कभी नहीं कर पाते।
और एस्टेक राजनीति के बारे में क्या? मोंटेजुमा को अक्सर डरपोक दिखाया जाता है।
किताब उसे अलग नजरिए से देखती है। वो कहती है कि मोंटेजुमा डरपोक या अंधविश्वासी नहीं था, बल्कि वो अपनी संस्कृति के नियमों, रिवाजों और राजनीतिक मजबूरियों में फंसा हुआ था। वो एक ऐसी मुसीबत से निपट रहा था जो पहले कभी आई ही नहीं थी। उसकी हिचकिचाहट शायद मजबूरी थी, कमजोरी नहीं।
ये बिल्कुल अलग नजरिया है। मेक्सिको के बाद किताब पेरू पहुंचती है, फ्रांसिस्को पिजारो और इंका साम्राज्य। क्या वहां भी यही सब हुआ?
हाँ बिल्कुल, और शायद ज्यादा बेरहमी से। पिजारो को कॉर्टेस से कम पढ़ा लिखा, ज्यादा रूखा सिपाही दिखाया गया है। वो साफ तौर पर कॉर्टेस की नकल करना चाहता था। पहुंचा जब इंका साम्राज्य दो भाइयों अताहुआल्पा और हुआस्कर के बीच एक भयानक गृह युद्ध से तबाह होकर कमजोर पड़ चुका था।
अरे वाह, मतलब टाइमिंग एकदम सही थी उसकी।
बिल्कुल, साम्राज्य बटा हुआ था, थका हुआ था। उसने एक मजबूत, एकजुट दुश्मन पर हमला नहीं किया,
उसने स्पूट का फायदा उठाया।
हाँ, फिर वो घटना है अताहुआल्पा का पकड़ा जाना कजमार्का में। इसे अक्सर स्पेनिश बहादुरी की मिसाल बताया जाता है।
हाँ, कि कैसे मुट्ठी भर लोगों ने सम्राट को पकड़ लिया।
लेकिन किताब कहती है कि ये कामयाबी मिली क्योंकि स्पेनिश अचानक टूट पड़े। आश्चर्य, इनका भौचक्के रह गए, मनोवैज्ञानिक आघात, और शायद इंकाओं की लड़ाई की शुरुआत थोड़ी रस्मी या कम घातक होती थी। स्पेनियों की हिम्मत दरअसल हताशा से आई थी, उनके पास खोने को कुछ था नहीं।
और क्या यहाँ भी लड़ाई लंबी चली?
बहुत लंबी। इनका राजधानी कुस्को पर कब्जा हो जाना कहानी का अंत नहीं था। मान को इनका जैसे नेताओं ने पहाड़ों में छिपकर दशकों तक लड़ाई जारी रखी, विल्काबाम्बा जैसे गुप्त ठिकानों से। तो विजय कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये बहुत लंबी, खूनी और विवादित प्रक्रिया थी।
किताब सिर्फ इन मशहूर जीत की कहानियों तक ही सीमित नहीं है, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दूसरे अभियानों को भी देखती है जो बुरी तरह फेल हुए।
जैसे
ग्वाटेमाला में पेड्रो डी अल्वालाडो की क्रूरता, जिसके कारण वहां कभी न खत्म होने वाले विद्रोह हुए, या फिर उत्तरी अमेरिका में हर्नांडो डी सोटो का अभियान। वो सोने के काल्पनिक शहर ढूंढता रहा, तबाही मचाता रहा और आखिर में नाकाम रहा।
तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि सफलता पक्की नहीं थी।
हाँ, और ये भी कि कॉन्क्विस्टाडोर मॉडल अक्सर सिर्फ तबाही लाता था।
और इन सबके बीच वो एक अलग कहानी है एल्वर न्यूनेस कैबेसा दे वाका की।
अरे हाँ, वो तो कमाल की कहानी है। कैबेसा दे वाका का जहाज टूट गया टेक्सास के पास। अब जीतने की कोशिश करने के बजाय उसने और उसके साथियों ने जिंदा रहने के लिए वहां की स्थानीय संस्कृति को अपना लिया।
अच्छा, क्या किया उन्होंने?
8 साल तक वो अलग अलग कबीलों के बीच रहे, व्यापारी बन गए, वैद्य बन गए, उनकी दवाएं बहुत मशहूर हो गई। उनकी कहानी दिखाती है कि टकराव के बजाय शांति से साथ रहने, एक दूसरे से सीखने का रास्ता भी था, पर ज्यादातर विजेताओं ने वो रास्ता चुना नहीं।
ये तो बिल्कुल अलग है, अनुकूलन टकराव नहीं।
हाँ, और आखिर में किताब इस सवाल पर आती है कि भाई, ये जो हीरो वाली कहानी है कॉन्क्वेस्टाडोर्स की, ये बनी कैसे और टिकी कैसे रही इतने सालों तक? इसका सोर्स क्या था?
कहां से आई ये कहानी?
इसका मुख्य सोर्स था प्रोबांजा दे मेरितो, योग्यता का प्रमाण।
ये क्या चीज थी?
ये वो ऑफिशियल रिपोर्टें थीं जो विजेता लोग स्पेन के राजा को भेजते थे। क्यों? ताकि राजा खुश होकर उन्हें इनाम दे, पेंशन दे, जमीन जायदाद दे, पदवी दे।
अच्छा, तो ये एक तरह की अर्जी थी।
बिल्कुल, ये कोई सच्चा इतिहास नहीं था, ये कानूनी दलीलें थीं, अपनी तारीफों के पुल थे। इनमें विजेताओं ने जानबूझकर क्या किया? अपने स्वदेशी सहयोगियों की भूमिका को एकदम कम दिखाया।
क्यों?
ताकि लूट का माल या जीत का क्रेडिट शेयर न करना पड़े। उन्होंने अपनी गलतियों, अपनी बेरहमी पर पर्दा डाला और दुश्मन कितना ताकतवर था और हम कितने बहादुर थे, ये बड़ा चढ़ाकर बताया।
हर्नान कॉर्टेस के जो खत मशहूर हैं, वो भी इसी तरह के थे?
हाँ, वो इसी स्टाइल का क्लासिक उदाहरण है, खुद की बड़ाई, दूसरों को छोटा दिखाना।
और ये मिथक चला क्यों? लोग इसे सच क्यों मानते रहे?
क्योंकि ये स्पेन के शाही घराने के लिए, उनके गौरव के लिए बहुत सुविधाजनक था, और बाद में ये उपनिवेशवाद को सही ठहराने का एक मजबूत हथियार बन गया। ये दिखाने के लिए कि देखो, पश्चिमी सभ्यता कितनी महान है, उसका जीतना और फैलना तो किस्मत में लिखा था, जरूरी था।
और ये सोच आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है।
बिल्कुल।
तो इस पूरी बातचीत से कुछ मुख्य सबक क्या निकलते हैं? मेरे लिए तो सबसे बड़ा ये है कि महान व्यक्ति के मिथक से आगे देखना होगा। मतलब सफलता सिर्फ एक हीरो की वजह से नहीं मिलती।
सही।
उसमें सही समय, सही जगह, किस्मत और हजारों दूसरे लोगों का हाथ होता है, चाहे वो साथ दें या विरोध करें।
हाँ, और दूसरा बड़ा सबक
मेरे लिए, स्वदेशी लोगों को इतिहास के कर्ता के रूप में देखना। वो बेचारे लाचार शिकार नहीं थे, उनके अपने मकसद थे, अपनी राजनीति थी, उन्होंने विजय की प्रक्रिया को जाने अनजाने आकार दिया। ये स्पेनिश विजय से ज्यादा एक जटिल स्वदेशी गृह युद्ध जैसा था, जिसमें स्पेन वाले कूद पड़े।
ये बहुत अहम बात है। और तीसरा?
तीसरा वो तकनीकी या सांस्कृतिक ऊंच नीच वाले मिथक को तोड़ना। असली हथियार तलवारें या बंदूकें नहीं थीं,
बल्कि
असली हथियार थे अदृश्य रोगाणु यानी बीमारियां और फूट यानी विभाजन। ये हमें सिखाता है कि किसी भी बड़ी घटना को समझने के लिए सतह के नीचे देखना जरूरी है।
हाँ, और चौथा कन्क्वेस्टेडोर की असली पहचान, वो न सिर्फ हीरो थे, न सिर्फ विलन, वो उससे ज्यादा जटिल थे। वो अपने जमाने के सशस्त्र उद्यमी थे। उनका रोल एंड गोल समझना जरूरी है, पैसा और समाज में ऊपर उठना।
और पांचवा
इतिहास कैसे लिखा जाता है, इस पर सोचना। किसने लिखा, क्यों लिखा, किसकी कहानी नहीं बताई गई। वो प्रोबेंजा वाली बात हमें सिखाती है कि जो लिखा हुआ है उस पर भी सवाल उठाना कितना जरूरी है।
इस आखिरी बात को अगर हम आज की जिंदगी से जोड़ें तो ये सीधे सीधे मीडिया या राजनीति में जो कहानियां हमें परोसी जाती हैं उन पर लागू होती है ना।
अक्सर एक सिंपल सी कहानी होती है, ये हीरो, ये विलन। ये किताब याद दिलाती है कि हमेशा पूछो, ये कहानी कौन सुना रहा है, उसका मकसद क्या है, क्या कोई और पहलू भी है। मतलब आसान जवाबों से बचकर रहना चाहिए।
सही कहा।
किताब में कुछ बातें तो बहुत जोरदार है। जैसे वो कहते हैं, साम्राज्यों का पतन स्पेनिश विजय नहीं बल्कि अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा स्वदेशी विद्रोह था।
हाँ, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। स्पेनियों को सेंटर से हटाकर स्थानीय लोगों को मुख्य भूमिका दे देता है।
बिल्कुल। या फिर ये विजेता शाही सेना के सैनिक नहीं थे, वे सशस्त्र उद्यम पूंजीपति और क्रूर उद्यमी थे।
ये उनके रोल और गोल को एकदम साफ कर देता है। कोई महान योद्धा नहीं, बल्कि पैसे और पावर के पीछे भागते लोग।
हाँ, उन्हें ऊंचे आसन से उतारकर जमीन पर ले आता है, और ये भी कि विजय के सबसे प्रभावी हथियार स्टील और बारूद नहीं बल्कि रोगाणु थे। चेचक ने महीनों में वो कर दिखाया जो स्पेनिश हथियार दशकों में नहीं कर सकते थे।
ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास में किस्मत का या जैविक चीजों का कितना बड़ा रोल होता है, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं।
और आखिर में विजय की हमारी पारंपरिक समझ खुद विजेताओं द्वारा बताई गई कहानी है। उनकी रिपोर्टें वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं बल्कि कानूनी याचिकाएं थीं।
ये तो सीधे सीधे इतिहास लिखने के तरीके पर ही उंगली उठाता है, याद दिलाता है कि इतिहास हमेशा किसी ना किसी की व्याख्या होता है, सिर्फ तथ्य नहीं।
परे, तो इन सब बातों का आज की जिंदगी में क्या इस्तेमाल है? एक तो वही, जो भी बड़ी कहानी सुनाई जा रही है उस पे सवाल उठाना, चाहे वो न्यूज हो, विज्ञापन हो या सोशल मीडिया पे कोई वायरल चीज।
हाँ।
दूसरा, जटिलता को स्वीकार करना। दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, हर चीज के पीछे कई परतें होती हैं, आसान जवाबों से बचना।
तीसरा, कहानी गढ़ने की ताकत को समझना। कैसे कोई बात बताई जाती है वो अक्सर तथ्यों से ज्यादा असर डालती है। ये मार्केटिंग में भी होता है, राजनीति में भी।
चौथा, शायद अलग अलग संस्कृतियों के बीच संवाद में सबक लेना। गलतफहमियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं और दूसरे का नजरिया समझना कितना जरूरी है।
और पांचवा, अनपेक्षित परिणाम। जैसे स्पेनियों का इरादा शायद बीमारी फैलाना नहीं था, पर उनके आने से ये हुआ, ये हमें आज के बड़े बदलावों, टेक्नोलॉजी, नीतियां के अनचाहे नतीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
हाँ, जैसे आजकल हम किसी स्टार्टअप की सफलता की कहानी सुनते हैं, तो क्या हम सिर्फ उसके महान फाउंडर को देखते हैं, या हम बाजार के हालात, टीम का काम, सरकारी मदद और हाँ, किस्मत को भी देखते हैं? क्या वो कंपनी भी अपनी कहानी कुछ वैसे ही नहीं गढ़ रही जैसे विजेताओं ने अपनी प्रोवेंजा गढ़ी थी?
ये किताब हमें ज्यादा गहराई से सोचने के औजार देती है। मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ा आश्चर्य शायद स्वदेशी गठबंधनों का पैमाना था। ये जानना कि स्पेनिश सफलता इतनी ज्यादा उन पर निर्भर थी, ये पूरी पुरानी कहानी को पलट देता है। और दूसरा, ये समझना कि वो हीरो वाली कहानी कितनी सोच समझ कर बनाई गई थी।
और मेरे लिए बीमारी का रोल, यह हमेशा साइड में रहता था, फुटनोट में। यहाँ ये मुख्य किरदार है। और साथ ही कबेजा दे वाका का उदाहरण, वो बहुत दिलचस्प लगा।
हाँ, कि दूसरा रास्ता भी था।
हाँ, कि इतिहास में हमेशा दूसरे रास्ते होते हैं, भले उन पर कम चला गया हो। कुल मिलाकर ये किताब हमें एक आसान, आरामदायक मिथक से निकालकर एक ज्यादा मुश्किल, ज्यादा उलझी हुई, पर शायद ज्यादा सच्ची और मानवीय हकीकत तक ले जाती है।
इंसान के रूप में दिखाती है, उनकी अपनी इच्छाओं, क्रूरताओं और कमजोरियों के साथ। ये हमें इतिहास को ज्यादा ईमानदारी से देखने को कहती है।
हाँ, और शायद ये सवाल पूछने पे मजबूर करती है कि आज हम कौन से मिथकों को सच मानकर जी रहे हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।